आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और हम लोग आपकी स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोग दो पार्ट में ये चीज देख चुके हैं कि जो मिसेस पियर्सन है और जो मिसेस फिट्ज़जेरल्ड है, उन दोनों ने अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर ली है। क्यों? क्योंकि वो मिसेस पियर्सन की फैमिली को एक सबक सिखाना है कि वो अपनी मदर और अपनी वाइफ की इज्जत करें, कि वो जितने सेल्फलेसली अपनी ड्यूटी निभाती आई हैं सालों से, उस चीज के लिए उनको रिस्पेक्ट किया जाए। एंड मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्ज़जेरल्ड की जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। मिसेस फिट्ज़जेरल्ड जो है वो काफ़ी बोल्ड हैं, वो स्मोक करती हैं, कार्ड्स खेलती हैं एंड शी ड्रिंक्स ऑल्सो, वो अल्कोहल भी पीती हैं। और यहाँ पे मिसेस पियर्सन जो है वो काफ़ी हम्बल, काइंड, सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही इमोशनल हैं। सो जब जो मिसेस फिट्ज़जेरल्ड है मिसेस पियर्सन के घर जाती हैं और उनकी बॉडी में, तो उनका एनकाउंटर होता है फर्स्ट उनके बच्चों के साथ, पहले उनकी बेटी यानी डॉरिस और उसके बाद उनके बेटे यानी सिरिल के साथ उनका एनकाउंटर होता है। और वो दोनों ही जो है आते के साथ, घर आते के साथ ही अपने वर्कलोड यानी जो भी ऑफिस में वो काम करके आए हैं, थक के आए हैं, उसके बारे में कंप्लेन करने लगते हैं। एंड इनफैक्ट वो अपनी मदर को उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि उनका हर कुछ रेडी होना चाहिए, उनकी चाय बनी होनी चाहिए, उनके कपड़े आयरन होने चाहिए। और वहीं पे नेक्स्ट जब उनके हस्बैंड यानी जॉर्ज पियर्सन के साथ जब उनका एनकाउंटर होता है, तब वो जॉर्ज जो है उनको बताते हैं कि वो चाय नहीं पियेंगे क्योंकि आज जो है वो स्नूकर नाइट है उनकी क्लब में। और तभी मिसेस पियर्सन यानी जो मिसेस फिट्ज़जेरल्ड है वो कहती है कि अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया, ऐसे भी चाय बनी नहीं थी। और इस बात का जॉर्ज को काफ़ी बुरा लग जाता है क्योंकि ये चीज़ काफ़ी अनयूजुअल थी कि वो घर आए और जो उनकी वाइफ है यानी एनी पियर्सन, उन्होंने उनके लिए चाय ना बनाई रखी हो। और तभी उस चीज़ को लेकर के मिसेस पियर्सन जॉर्ज का मजाक उड़ाती है और कहती है कि क्या यही हरकत तुम अपने बारटेंडर के साथ अपने क्लब में कर सकते हो कि उसे बियर के लिए पूछो और उसे उस चीज़ के लिए तुम अपसेट हो जाओ जबकि तुमको बियर पीनी भी नहीं थी, और तुम उससे अपसेट हो जाओ कि उसने तुम्हारे लिए बियर क्यों नहीं ग्लास में ढाली। और इसी बात पे मिसेस पियर्सन जो है वो जॉर्ज को एक तरह से एक टॉन्ट मारती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तब जितना तुम्हारा क्लब में मजाक उड़ता है उससे कहीं ज़्यादा उड़ने लगे। और तभी जॉर्ज को थोड़ा झटका लगता है और वो समझ नहीं पाते कि मिसेस पियर्सन एक्चुअली कहना क्या चाहती है। सो अब हम लोग अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 45 से। जॉर्ज, लाफ एट मी? दे डोंट लाफ एट मी। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू। You ought to have found that out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jokes, famous. They'll call you Pompey Pearson because they think you're so slow and pompous. George, horrified. Never. Mrs. Pearson, it's always beaten me why you shouldn't want to spend so much time at a place where they're always laughing at your behind, your back and calling you names, leaving your wife at home night after night. Instead of going out with her, who doesn't make looking a fool? Cyril enters right with a glass of milk in one hand and thick slice of cake in the other. George, almost dazed, turns to him appealingly. George, hey Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey Pearson, do they? Cyril, embarrassed, hesitates angrily. Go on, tell me, do they? Cyril, embarrassed. Yes, Dad, I'm afraid they do. George slowly looks from one of the other, staggered. George, slowly. Well, I'll be damned. George exits left, slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. Cyril, now you shouldn't have told him that, ma'am. That's not fair. You have hurt his feelings. Mine too. Mrs. Pearson, sometimes it does people good to have their feelings hurt. The truth oughtn't to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. Cyril, gloomily, I doubt it. Mrs. Pearson, severely, possibly you do. But what I doubt is whether your opinion's worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. Cyril, well, what if I do? I've got to enjoy myself somehow, haven't I? Mrs. Pearson, I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself. But are you? And where's it getting you? There's a sharp, hurried knocking heard off left. Cyril, might be for me. I'll see. Cyril hurries out left. In a movement, he re-enters, closing the door behind him. So, yahan pe jo hai, Mrs. Pearson jo hai, wo itne saalon ka raaz jo hai, wo uske saamne phod deti hai aur kehti hai ki tum kya baat karte ho ke mazak udane ki, tumhara to itna zyada mazak udta hai ki tumko sab log Pompey Pearson kehte hain. और वो इस वजह से है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्लो, क्योंकि वो इतने ओल्ड हैं तो वो बहुत ज्यादा स्लो मूव करते हैं और वो बहुत ज्यादा पॉम्पस हैं, इस वजह से उनका ये नाम पड़ा है. एंड ऑफकोर्स जो जॉर्ज है उनको काफी ज्यादा इस बात का अफसोस होता है और वो बिलीव नहीं कर पाते कि कोई उन्हें इस तरह की चीज बोल रहा है, और इसी वजह से वो जल्दी से अपने बेटे सिरिल को जैसी देखते हैं वो कहते हैं कि तुम तो मेरे साथ एक दो बार क्लब गए हो ना, क्या लोगों ने मेरे पीछे बातें करी है? तब बेचारे सिरिल को ये बात बतानी पड़ती है कि हाँ एक्चुअली ऐसा है और लोग आपके पीछे बात करते हैं. ये बात सुन करके जॉर्ज पियर्सन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं. और फिर सिरिल जो है वो मिसेस पियर्सन को फेस करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको डैड को इस तरह से बोलना चाहिए था, उनकी फीलिंग्स हर्ट करनी चाहिए थी. और तभी जो मिसेस पियर्सन है वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि कभी कभी फीलिंग्स हर्ट करना ही अच्छा होता है, बिकॉज आपको एक लेसन सिखाने के लिए. और अगर जो है वो क्लब थोड़े दिन नहीं जाएंगे तो वो उनके लिए ही बेटर होगा और लोग उनके बारे में उनका निकनेम भी भूल जाएंगे. एंड इनफैक्ट मिसेस पियर्सन ने जो जॉर्ज है उनको ये बात कही थी कि तुम देख लो कि तुम जो हो अपनी वाइफ को अकेले घर छोड़ करके और जिस क्लब में तुम जा करके इतना सारा टाइम स्पेंड करते हो वहीं के लोग तुम्हारे नहीं हो पाए, और तुम तो फिर अपनी फैमिली को तुम क्यों इग्नोर करते हो एक क्लब के लिए. देन अगेन सिरिल जो है, सिरिल से भी और मिसेस पियर्सन की भी बहस होती है और फिर एक नॉक सुनाई देता है और सिरिल कहता है कि शायद ये मेरे लिए होगा, और फिर सिरिल जो है वो वहां से चला जाता है. इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जेरल्ड, यू डोंट वॉन्ट हियर डू यू. सो अगेन यहाँ पे सिरिल कहता है, जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहां पे मिसेस फिट्जेरल्ड खड़ी है, और वो तभी अपनी मदर को कहता है कि फिर से वो बुढ़ी औरत आ गई है और मुझे नहीं लगता कि आपको अभी उसकी कंपनी चाहिए. तो मिसेस पियर्सन क्या कहती है, सर्टेनली आई डू, आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग आइदर, शी इज अ वेरी नाइस वुमन विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर मेक. सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट, मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट स्मैकिंग हर लिप्स, सिरिल री एंटर्स लेफ्ट अशरिंग इन मिसेस फिट्जेरल्ड who hesitates in the doorway. Mrs. Fitzgerald. Come in, Mrs. Fitzgerald. I just wondered if everything's all right. No, it isn't. Of course it is. You be quiet. Why should I be quiet? Because I tell you to, you silly, spoiled young peckin. Mrs. Fitzgerald, protesting nervously. Oh, no, surely. Mrs. Pearson. Now, Mrs. Fitzgerald, just let me manage my family in my own way, please. Yes, but Cyril, Mr. Cyril Pearson, you, please, Mrs. Fitzgerald. Cyril stalks off into the kitchen. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगेन फिर जो ऑफकोर्स क्यों उनकी जो मिसेस फिट्जेरल्ड की जो बिहेवियर है वो इतना ज्यादा क्यों शेकी है, बिकॉज वो अब एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है और वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड नहीं है. तो वो सिरिल को जो है वो कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन जो मिसेस पियर्सन है वो अभी की मिसेस पियर्सन वो जो है वो रोक देती है और कहती है कि मुझे प्लीज अपनी फैमिली को अपने तरह से मैनेज करने दो. यानी वो असली वाली मिसेस पियर्सन को रोक देती हैं कि तुम अभी मैं हूं और मैं तुम हूं, आप समझ रहे हो. तब सिरिल को वापस गुस्सा आ जाता है और वो वहां से कहता है, वो वहां से चला जाता है. अब जो डायलॉग्स आएंगे वो मिसेस फिट्जेरल्ड और मिसेस पियर्सन के बीच में होंगे. तब ये लोग का क्या चाहते हैं, वहां पे जो सेटी है यहाँ पे जहाँ पे वो बैठने की जगह है वहां पे वो बैठते हैं. एंड देन मिसेस फिट्जेरल्ड जो है वो स्टार्ट करती है, ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग. मिसेस पियर्सन, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन द राइट प्लेस, दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस. इज जॉर्ज होम, शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी. यस, आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाई दे थिंक ऑफ हिम एट द व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब. मिसेस फिट्जेरल्ड, Well, they think a lot of him, don't they?
Mrs. Pearson.
No, they don't. And now he knows it.
Mrs. Fitzgerald.
Oh dear, I wish you hadn't, Mrs. Fitzgerald.
Mrs. Pearson. Nonsense. Doing them all a world of good, and they'll be eating out of your hand soon, you'll see.
Mrs. Fitzgerald.
I don't think I want them eating out of my hand.
Mrs. Pearson.
Well, whatever you want, they'll be doing it. All three of them. Mark my words, Mrs. Pearson.
So again, यहाँ पे जो है वो पूछती है, of course, वो अपनी फैमिली के बारे में कंसर्न है, और वो जो है मिसेस फिट्जरल्ड यानी जो मिसेस पियर्सन है वो पूछ रही होती है कि सब कुछ सही तो चल रहा है और क्या जॉर्ज घर आ गया और कहीं कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई। तब मिसेस पियर्सन जो है उन्हें कहती है कि वो आ भी गया और मैंने बता भी दिया कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। एंड मिसेस पियर्सन यानी जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो कहती है कि मैं जो हूँ ये बात बिल्कुल मेक श्योर करूंगी कि वो लोग वही करे जो तुम उनको बोलो। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं चाहती हूँ कि वो लोग जो है बिल्कुल मेरे गुलाम बन जाएं। लेकिन मिसेस पियर्सन बिल्कुल डिटरमाइंड है, वो कहती है कि मैं ये करके रहूंगी कि तुम जो बोलोगी उन लोगों को ये बात करनी पड़ेगी। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमी। ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर। ही मूव्स टू द आर्मचेयर लेफ्ट, सिट्स डाउन हेवीली एंड ग्लूमली lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously.
George, just look in for a minute, I suppose, Mrs. Fitzgerald?
Mrs. Fitzgerald, who doesn't know what she's saying.
Yes, I suppose so. George?
George.
George?
Mrs. Fitzgerald.
Oh, I'm sorry.
Mrs. Pearson.
What does it matter?
Your name's George, isn't it?
Who do you think you are, Duke of Edinburgh?
George, angrily.
What's he got to do with it? Just tell me that.
And isn't it bad enough without her calling me George, Note T, Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs.
Yes, crying her eyes out.
Mrs. Fitzgerald.
Oh dear, I ought to have known.
George, staring at her annoyed. You ought to have known. Why ought you have to be known?
Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are at sixes and sevens here just now, so perhaps you'll excuse us.
Mrs. Pearson, before Mrs. Fitzgerald can reply, I won't excuse you, George Pearson. Next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her. Good evening, or how do you do, or something. And don't just march in and sit down without a word. It's bad manners.
Mrs. Fitzgerald.
No, it's all right.
Mrs. Pearson.
No, it isn't all right. We'll have some decent manners in the house, or I'll know the reasons why.
Well?
George, intimidated.
Well, what?
Mrs. Pearson, taunting him.
Why don't you get off to your club? Special night tonight, isn't it? They'll be waiting for you, wanting to have a good laugh.
Go on then, don't disappoint them.
George, bitterly.
That's right. Make me look silly in front of her now.
Go on, don't mind me. Sixes and sevens. Poor Doris has been crying her eyes out, getting the neighbors into this fun.
Suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting.
All right, let her hear it. What's the matter with you? Have you gone Barney or what?
Mrs. Pearson jumping up savagely.
If you shout at me like that again, George Pearson, I'll slap your big, fat, silly face.
Mrs. Fitzgerald moaning, oh, no, please, Mrs. Fitzgerald.
Mrs. Pearson sits.
George, staring at her, bewildered.
Either I am off my chump or you two are.
How do you mean?
No, please, Mrs. Fitzgerald.
Look, you are Mrs. Fitzgerald.
So why are you telling yourself to stop when you're not doing anything? Tell her to stop. Then there would be some sense in it.
Staring at Mrs. Pearson.
I think you must be tiddly.
Mrs. Pearson, staring up savagely.
Say that again, George Pearson.
George.
All right.
So, ye ek hamare liye bahut hi long paragraph ho gaya. So, again, अब क्या होता है कि जैसे ही जो है मिसेस फिट्जरल्ड एंटर करती हैं, तो वो ऑफकोर्स उन लोगों को थोड़ी पता है कि ये जो है वो एक्चुअली में कौन है। तब ये सारी बहस होने लगती है और वो जो है मिसेस पियर्सन जो सारी बातें उसको बताती हैं, एंड तभी हम उन लोगों के बीच कौन आ जाता है, जॉर्ज। और इनफैक्ट
वो बिल्कुल वो इतना बड़ा उसको शौक मिला था कि उसके बारे में लोग क्या कहते हैं क्लब में, और इस वजह से वो थोड़ा अजीब सा हो रहा था। और अगेन मिसेस फिट्ज़रॉय को जैसे ही पता चलता है कि डॉरिस जो है वो रो रही है अपने रूम में ऊपर जाकर के, तब उसको भी काफी बुरा लगता है। और वो लोग क्या करते हैं कि इतनी बहस होने लगती है कि जॉर्ज और मिसेस पियर्सन जो है वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, वो भी मिसेस फिट्ज़रॉय के सामने। सो अगेन जो मिसेस फिट्ज़रॉय है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज मिसेस फिट्ज़रॉय आप प्लीज रुक जाइए। और ये बात जॉर्ज को समझ नहीं आती है, तो वो कहते हैं कि या तो मैं पागल हो गया हूँ यानी तो तुम दोनों पागल हो गई हो। जब तुम मिसेस फिट्ज़रॉय हो तो तुम खुद को ही कैसे कह सकती हो जबकि तुम कुछ कह ही नहीं रही हो। लेकिन ये सब क्या था, वो तो बॉडी एक्सचेंज हो गई है, एंड क्योंकि मिसेस पियर्सन इतनी ज्यादा नर्वस रहती है कि वो मिसेस फिट्ज़रॉय बन के उनको नर्वस दिखा रही है, करेक्ट। सो अगेन वो लोग बहुत ज्यादा चीखम चिल्ली हो जाता है, और अब जो है वो जॉर्ज जो है वो इंटिमिडेटेड हो जाते हैं, मतलब थोड़े से जो मिसेस पियर्सन से वो थोड़े से दब जाते हैं, घबरा जाते हैं। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, शी इज स्टिल वियरिंग द रैप, मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटिंग। मिसेस फिट्ज़रॉय, हेलो डॉरिस डियर। डॉरिस, हेलो मिसेस फिट्ज़रॉय। मिसेस फिट्ज़रॉय, I thought you were going out with Charlie Spence tonight. Doris, what's that to do with you? Mrs. Pearson, stop that. Mrs. Fitzgerald, no, it's all right. Mrs. Pearson, it isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer Mrs. Fitzgerald properly, Doris, or go upstairs again. Doris looks wonderingly at her father. George, don't look at me. I give it up. I just give it up. Well, answer her. Doris, I was going out with Charlie Spence tonight, but now I have called it off. Oh, what a pity, dear. Why have you? Doris, with a flash of temper. Because if you must know, my mother's been going all the way making me feeling miserable and saying he's got buck teeth and he's half-witted. Mrs. Fitzgerald, rather bolder, to Mrs. Pearson. Oh, you shouldn't have said that. Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald, I'll manage my family. You manage yours. George, taking her off now, are you, Annie? Mrs. Pearson, they are waiting for you at the club, George. Don't forget. And don't you start crying again, Doris. Mrs. Fitzgerald, getting up with sudden decision. That's enough. Quite enough. George and Doris stare at her bewildered. To George and Doris. Now listen, you two. I want to have a private talk with Mrs. Fitz. She corrects herself hastily. Then with Mrs. Pearson. So I'll be obliged if you leave us alone for a few minutes. I'll let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. George. I'm glad somebody can, because I can't. Come on, Doris. George and Doris exit left. As they do, Mrs. Fitzgerald moves to left of the small table and sits. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. Mrs. Fitzgerald, we must change back now. We really must. Mrs. Pearson, why? Because this has gone far enough. I can see they're all miserable, and I can't bear it. Mrs. Pearson, a bit more of the same would do them good, making a great difference already. She moves to the right of the table and sits. Mrs. Fitzgerald, no, I can't stand any more of it. I really can't. We must change back. Hurry up, please, Mrs. Fitzgerald. Well, if you insist. Yes, I do, please. She stretches her hand across the table eagerly. Mrs. Pearson takes them. Quiet now, relax. Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald stare at each other, muttering exactly as before. Ashtatam, ashtalam, ashtata, lamba dumba dona. They carry out the same action as before, going lax and then coming to life. But this time, of course, they become their proper personalities. So, अब जो है जब ये सारे फैमिली में बहस बढ़ती गई तो जो मिसेस फिट्ज़रॉय है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उनकी फैमिली को इस तरह से ट्रीट कर रहा है, तो वो अचानक से खड़ी हो जाती हैं और वो बोलने लगती है कि जॉर्ज और डोरिस प्लीज मुझे जो है वो मिसेस फिट्ज़रॉय, और वो जल्दी से अपने आपको करेक्ट करती हैं, क्यों, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उन लोग ने बॉडी एक्सचेंज करी है। तो कहती है कि मुझे पियर्सन, मिसेस पियर्सन से कुछ बात करनी है, तो प्लीज तुम लोग हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो एंड आई एम श्योर कि तुम लोग ये चीज रिग्रेट नहीं करोगे। और तभी वो दोनों चले जाते हैं और जॉर्ज कहते हैं कि आई होप कि तुम कुछ कर पाओ, क्योंकि मैंने तो सारे होप्स छोड़ दिए हैं कि हमारे बीच कुछ ठीक होगा। एंड देन फिर मिसेस पियर्सन जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज अब हमें बॉडीज वापस से एक्सचेंज कर लेनी चाहिए, वापस से अपने सही फॉर्म में आ जाना चाहिए। एंड तभी जो है वो मिसेस फिट्ज़रॉय मान जाती हैं और फिर से वो लोग वही मंत्र पढ़ते हैं एंड देन फिर से वही एक्टिविटी होती है, वो लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं यानी बेहोश हो जाते हैं और फिर वो लोग वापस अपनी सही बॉडी में आ जाते हैं। अब जो डायलॉग होंगे वो जो मिसेस फिट्ज़रॉय है वो मिसेस फिट्ज़रॉय ही होंगी और जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस पियर्सन ही होंगी ओरिजिनली। सो अब नो कंफ्यूजन। मिसेस फिट्ज़रॉय, आह वेल आई एंजॉयड दैट, आई डिडंट, वेल यू ऑट टू हैव डन। नाउ लिसन मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन एल्स आई विल हैव बीन वेस्टेड। आई विल ट्राई नॉट टू मिसेस फिट्ज़रॉय, they have not had as long as I would like to have them. Another hour or two's rough treatment might have made it certain. Mrs. Pearson, I am sure they'll do better now, though I don't know how I'm going to explain. Mrs. Fitzgerald, don't you start any explaining or apologizing, or you're done for. Mrs. Pearson, it's all right for you, Mrs. Fitzgerald. After all, they aren't your husband and children. Mrs. Fitzgerald, now you listen to me. You admitted yourself you were spoiling them and they didn't appreciate you. Any apologies, any explanations, and you will be straight back where you were. I'm warning you, dear, just give them a look, a tone of voice, now and again, to suggest you might be tough with them if you wanted to be, and it out to work. Anyhow, can we test it? Mrs. Pearson, how? Mrs. Fitzgerald, well, it is what it is you would like them to do that they don't do. Stop at home for once? Yes, and give me a hand with supper. Anything you would like them to do that would enjoy whether they do or not. Mrs. Pearson, well, yes, I like a nice game of rummy, but of course I hardly ever have one except at Christmas. Mrs. Fitzgerald, getting up. That'll do then. She moves towards the door, left, then turns. But remember, keep firm, or you have had it. She opens the door, calling, Hoi, you can come in now. Coming away from the door and moving right, slightly, quietly. But remember, remember, a firm hand. George and Doris and Cyril file in through the doorway, looking apprehensively at Mrs. Pearson. I am just off to let you enjoy yourself. The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles. Much relieved, they smile back at her. Doris, yes, mother? Mrs. Pearson, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. Mrs. Fitzgerald, giving a final warning. Remember, Mrs. Pearson, nodding, then looking sharply at the family. No objections, I hope. George, no, mother. Whatever you say. Mrs. Pearson, I thought we would have a nice family game of rummy and then your children could get the supper ready while I have a talk with your father. George, suits me. He looks challengingly at the children. What about you two? Cyril, yes, that's all right. Doris, well, I... Mrs. Pearson, what? Speak up. Doris, oh, I think it would be lovely. Mrs. Pearson, goodbye, Mrs. Fitzgerald. Come again soon. Mrs. Fitzgerald, yes, dear. Night all. Have a nice time. Mrs. Fitzgerald exits left and the family cluster around mother as the curtain falls. So, ye jo hai, jab ye log ne personality change kari wapas se, tab jo Mrs. Fitzgerald thi, unhone kaha ki tum wapas apni koi bhi mistake repeat nahi karogi, na tum apne aap ko over explain karogi, na hi apologize karogi, kyunki agar tumne aisa kiya to abhi jo bhi hum logon ne ye natak kara wo sab dhara ka dhara reh jayega aur koi fayda nahi hoga. So tumhe jo hai wo bilkul firm rehna padega. तो उन्होंने पूछा कि ऐसा तुम क्या चाहती हो जो तुम हमेशा से करना चाहती थी लेकिन ये लोग मना करे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो अपनी फैमिली के साथ रमी खेलना था, रमी नाइट्स करना था, लेकिन जो है मैं सिर्फ क्रिसमस पे ही ये कर सकती हूँ। रमी जो है वो कार्ड्स वाला गेम होता है। सो अगेन, अब वो क्या होता है, मिसेस फिट्ज़रॉय उनकी पूरी फैमिली को यानी पियर्सन फैमिली को बुला लेती हैं और कहती हैं कि आओ हमारी बात हो गई। और फिर अगेन ये मिसेस पियर्सन जो है वो डोरिस से कहती हैं कि अब जब तुम बाहर नहीं जा रहे हो, तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम लोग घर पे ही रमी का गेम खेलें। तब सारे लोग, क्योंकि वो अब जो मिसेस पियर्सन है वो थोड़ी ज्यादा खुश नजर आ रही थी और काफी नॉर्मल नजर आ रही थी, तो उन लोगों को भी होप लगी और उन लोगों ने भी वो लोग सब अग्री कर गए। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि कुछ खाने की तैयारी कर लो जब तक मैं और तुम्हारे पापा बात कर रहे हैं। और तभी सब लोग जो है मिसेस पियर्सन की हाँ में हाँ मिलाते गए, बिकॉज दिस वॉज द बेस्ट टाइम, उनको अपनी मदर वापस मिल रही थी, थोड़े ज्यादा वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं नजर आ रही थी। एंड तभी मिसेस फिट्ज़रॉय जो है वो उन सबको गुड बाय बोलती हैं, और जैसे जब वो वहां से जाती हैं तो सारी फैमिली जो है वो मिसेस पियर्सन के आसपास गैदर हो जाती है, क्योंकि अब वो लोग भी थोड़े से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि क्योंकि अब मिसेस पियर्सन जो है वो नॉर्मल हो गए। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है खत्म। सो आप लोगों ने देखा कि कभी ना कभी हम लोगों को एक टफ डोज देना ही पड़ता है, क्योंकि हर कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहता है और उस चीज को रोकने के लिए आपको कभी ना कभी एक टफ मूव लेना पड़ता। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, दिस प्ले रिटन इन द 1950s इज अ ह्यूमरस एंड सटायरिकल डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। क्वेश्चन नंबर वन, वॉट आर द इश्यूज इट रेजेस। क्वेश्चन नंबर टू, वॉट डू यू थिंक इट कैरिकेचर्स दीज इश्यूज, और डू यू थिंक वॉट दैट द प्रॉब्लम इट रेजेस आर जेन्युइन। How does the play resolve the issue? Do you agree with the resolution? So, यहाँ पे हमसे question put up किया जा रहा है कि ये play actually 1950s में लिखा गया था, और ये दिखाता है कि एक माँ की family में क्या दुर्दशा मचती है, और उसी की चीज को लेकर के कि ये क्या क्या issues ये करता है कि हम लोग उनको for granted लेते हैं, first of all, उनको कभी appreciate नहीं करते हैं, और ये बात मान के रखता है कि यार मम्मियों को काम ही क्या है घर में, सिवाय इसके कि वो घर पे ही रहती हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग काम करते हैं। सो ये सारे इश्यूज ये रेज करता है। और अब इसका पार्ट टू जो है क्वेश्चन का, ये कैरिकेचर मतलब ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है किसी चीज का, क्योंकि ये हम लोग अपनी फैमिलीज में भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज देखते हैं कि हम लोग अपने मदर्स को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। तो ये एक ह्यूमरस प्ले है, लेकिन इसमें कहीं भी बातें वो मजाक नहीं है, वो हमें कहीं ना कहीं एक रियलिटी का फ्लैश देती है, जो कि ये मतलब हर घर में पूरी दुनिया में ये बात होती आई है कि हम लोग अपने मदर्स को बिल्कुल ये सोचते हैं कि आपको ना पढ़ना आता है, आप अगर उनका किसी एक दिन खाना खराब हो जाए या नमक ज्यादा हो जाए तो हम लोग अपनी अपने वाइफ्स पे और अपने मदर्स पे गुस्सा होने लगते हैं कि यार तुमको काम ही क्या था, तुमको खाना बनाना है वो भी ढंग से नहीं बना पा रही हो, या फिर हम लोग पूरे दिन के थक के आए हैं, तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि तुम चाय बना दो, ये इस तरह की चीजें। और हम लोग ये बात रियलाइज नहीं करते हैं कि उन्हें भी आराम की जरूरत है, वो लोग भी कंटिन्यू काम करती हैं सुबह से लेके रात तक। सो डू यू अग्री विद दिस रेजोल्यूशन? और ऑफ कोर्स वी डू अग्री विद दिस रेजोल्यूशन, बिकॉज ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि इम्पोर्टेंस क्या चीज होती है ना। क्वेश्चन नंबर टू, इफ यू वर टू राइट अबाउट दीज इश्यूज टूडे, वॉट आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स दैट यू वुड थिंक ऑफ एज रेलिवेंट। सो ये क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि अगर आप ये सिचुएशन अभी के प्रेजेंट जगह पे आप अप्लाई करो तो इसमें से क्या क्या चीज आपको रेलेवेंट लगती है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो काफी सब्जेक्टिव हो जाता है, वो आप लोग समझो कि बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं इस प्ले में, स्टोरी में, तो ये आपको क्या लगता है, ये आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, इज ड्रामा अ गुड मीडियम ऑफ कन्वेइंग अ सोशल मैसेज, डिस्कस। सो ड्रामा ऑफकोर्स एक सोशल मैसेज जो है वो हम लोग क्यों, नुक्कड़ नाटक अगर आपने देखा हो तो नुक्कड़ नाटक आप जाओगे एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आप वहां से कुछ ना कुछ लेकर के आओगे, वो क्या होता है, सोशल इश्यूज पे बहुत सारी बातें होती हैं।
भले ही ये ड्रामा हो या जो भी शेक्सपियर ने लिखे हो। अगर आप रोमियो जूलियट की ले लो, वो एक नॉर्मल कहानी, मतलब एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि वो ये भी दिखाता है कि कितना ज्यादा यू नो ऑनर किलिंग होता है कि नहीं। हमारे यहाँ पे भी देख लो आप कितनी ऑनर किलिंग होती है। तो ऑफकोर्स ड्रामा जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी बात भी पहुंचा दो उन तक और सबको लगे कि ये तो हम लोग एक एंटरटेनमेंट के लिए आए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द प्ले आउट इन पार्ट्स, इनैक्ट द प्ले ऑन अ सूटेबल ओकेजन। सो ऑफकोर्स ये तो एक ग्रुप एक्टिविटी होगी एंड सूटेबल ओकेजन आई थिंक मदर्स डे है, मदर्स डे नाम भी है प्ले का, तो आई थिंक अपने मदर्स को ये ट्रिब्यूट देना चाहिए और कोई ना कोई आप लोग कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन ग्रुप्स प्लेज और फिल्म्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म दैट यू हैव वॉच्ड। सो अगेन ये बहुत सारे प्लेज या अगर आपने जो मूवीज देखी हो और जो कि सोशल इशू पे बात करते हो तो वो सब आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे बहुत अच्छी जो हमारे पास एग्जांपल्स है वो है इंग्लिश विंग्लिश, जो कि अगेन एक मदर के रोल पे बात करती है ना। और देन आपके पास धड़क अगर आपने देखी हो तो वो क्या ऑनर किलिंग पे बात करती है। ऐसे बहुत सारी आपको मूवीज मिल जाएंगी। पिंक ये बहुत सोशल मैसेजेस आपको देती है, किस मीडियम से, आपको ड्रामे और एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपको बहुत ही ज्यादा पेचीदे सवाल पे छोड़ देती है। सो आप इस प्ले को अगेन पढ़ो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम लोगों ने इसकी सारी एक्सरसाइजेस खत्म कर ली हैं, ये काफी अच्छा प्ले है और साथ ही साथ आप अपनी मदर्स को जाकर के उस चीज के लिए हक करो, अप्रिशिएट करो और उनको फॉर ग्रांटेड ना लो। आप उनको जो है अच्छी तरह से ट्रीट करो और टाइम टू टाइम उनको आई लव यू, थैंक यू या कुछ गिफ्ट्स आपको देने चाहिए। इससे आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगे। ओके सो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, इसके एक्सरसाइजेस भी खत्म होते हैं। आप लोग इसको वापस पढ़ो और मैं आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।